अमर बिन आस की मिसाल देखिएगा। अमर बिन अलास के पास गए कौन? इब्ने शमासा के पास गए, और वो फोत होने के करीब थे, यानी डेथ बेड पे थे। आप बहुत देर तक रोए और अपना मुंह दीवार की तरफ फेरा। इनके बेटे कहने लगे, अब्बा जन, आप क्यों रोते हैं? क्या रसूलुल्लाह ने आपको ये खुशखबरी नहीं दी? तब उन्होंने अपना चेहरा सामने किया और फरमाने लगे, हमारे नज़दीक सब कामों से अफसल इस बात की गवाही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और मेरे ऊपर 3 दौर गुजरे हैं। एक हाल ये था कि मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह से ज़्यादा बुरा कोई ना था। ये कब हुआ? इस्लाम से पहले। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बस चले तो मैं आपको कत्ल कर दूँ, नऊज़ु बिल्लाह। अगर मैं इस हाल में मर जाता तो जहन्नमी होता। दूसरा हाल ये था कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। मैं रसूलुल्लाह के पास आया और कहा कि अपना दायां हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपकी बैत करूं। आपने अपना हाथ बढ़ाया। अमर बिन आस फरमाते, मैंने अपना हाथ खींच लिया। आपने फरमाया, अमर तुझे क्या हुआ? कहते, मैंने कहा मैं शर्त लगाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, क्या शर्त? मैंने कहा यह शर्त कि मेरे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाए। फरमाया, क्या तू नहीं जाता? अमा अलिम तस्लाम यहदिमा का न कबला हो कि इस्लाम तो पिछले गुनाहों को मिटा देता है, जैसे कि वन हिजरत तहदिमा का न कबला, जैसे हिजरत पिछले गुनाहों को माफ़ करवाती है। वन हज यहदिमा का न कबला हो, और हज भी पिछले गुनाहों को मिटाता है। कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह से बढ़कर मुझे कोई महबूब ना था, और मेरी निगाह में आपसे ज्यादा किसी की शान नहीं थी। मैं आपके जलाल की वजह से आपको आंख भर कर देख नहीं सकता था। अगर कोई मुझसे आपकी सूरत के मुतल्लिक सवाल करे, मैं बयान ही नहीं कर सकता। सहाबी थे, वजह क्योंकि मैं आंख भर के आपको देख ही नहीं सकता था। अगर मैं इस हाल में मर जाता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं जन्नती होता। अब ये दो हालतें एक्सट्रीम की गुजर गई। इसके बाद हम चंद चीज़ों में फंस गए। मैं नहीं जानता कि इनकी वजह से मेरा क्या हाल होगा। चुनाचे जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ कोई रोने और चीखने चिल्लाने वाली ना हो, ना आग हो जैसे मजूसी लेके जाते थे, और जब मुझे दफन करना तो मुझ पर अच्छी तरह मिट्टी डाल देना, फिर मेरी कब्र के गिर्द इतनी देर तक खड़े रहना जितनी देर में ऊंट नहर किया जाता है और इसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारे साथ मेरा दिल बहल जाए और मैं देख लूं कि मैं अल्लाह के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा हुआ कि जब मैयत को दफन करो तो उधर खड़े रहो, सल्लल्लाहु अलाफिया फ़इन्नहु युसल्लुल आन। फरमाया, अपने भाई के लिए कब्र पे खड़े होकर आफियत की दुआ करो, क्योंकि इस वक्त अंदर उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो आप देखिए, ये अमर बिन अलास, आपको पता है ये कौन है? अशरे मुबशरा में से। इनका ये रोना धोना है, हमारा क्या हाल है? हजरत हंजला सैदी कातबीन में से थे, वही लिखी इन्होंने और हदीस लिखते थे। कहते, मुझे अबू बकर मिले और पूछा, हंजला तुम कैसे हो? कहते, मैंने कहा हंजला तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर ने कहा, सुबहान अल्लाह, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, हम रसूलुल्लाह के पास होते हैं तो आप हमें जन्नत और जहन्नम की याद दिलाते हैं, गोया हमारी दोनों आंखों के सामने हैं। फिर जब हम आपके पास से चले जाते हैं तो बीवियों, औलाद और कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हमारा भी यही हाल है। फिर मैं और अबू बकर चले और रसूलुल्लाह के पास पहुँचे तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हंजला मुनाफिक हो गया। आपने फरमाया, तेरा क्या मतलब है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम आपके पास होते हैं तो आप हमें जन्नत जहन्नम की याद दहानी करवाते हैं, गोया कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर आपके पास से चले जाते हैं तो बीवी, बच्चे और कामों में मशगूल हो जाते हैं, तो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, वो ज़ात जिसके हाथ में मेरी जान है उसकी कसम, इल्लौ तदूमून अला मा तकूनून इंदी, अगर तुम उसी हालत में रहो जिसमें तुम मेरे पास होते हो, वफे जिक्री लसाफहतकुमुल मलाइकातु अला फुरुशिकुम, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर, वफी तुरुकिकुम, और तुम्हारे रास्तों पर तुमसे सलाम करें, मुसाफा करें। वलाकिन या हंजलतु साअतं वसाअतं, लेकिन हंजला, ये तो एक घड़ी है, ये तो एक घड़ी है। मतलब यह कि एक साथ दुनिया का काम और एक साथ अल्लाह की याद। और आपने ये बात 3 बार बयान फरमाई। 3-4 सेकंड तक हम भी तो अपना सोचें। चले, उनकी तो उस महफिल से उठ के ये हालत होती होगी तो वो इस पे परेशान होते थे, हमारा कहीं हाल इस महफिलों में बैठकर ये तो नहीं होता? कि हम इसी की दुनिया में ही तो परेशान और खोए खोए नहीं रहते? दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सच्चे मानों में अपना खौफ लगा दे। और अली बिन हुसैन के बारे में आता है, इमाम जोहरी कहते हैं, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन को सुना, वो अपने नफ्स का मुहासबा कर रहे थे और अपने रब से सरगोशी कर रहे थे और अपने नफ्स से कह रहे थे, ए नफ्स, तू कहाँ दुनिया के धोखे और इसकी आबादियों और रंगीनियों को काबिले एतमाद समझ कर इस पर मुतमईन हो गया? क्या तूने अपने अबा अजदाद के फौत हो जाने को बतौर इबरत नहीं जाना? और ज़मीन ने कैसे कैसे आसमान छुपा लिए और तेरे भाइयों के दिल दुखाए और तेरे दोस्तों को बुसीदा कर देने वाली मट्टी में भेज दिया? कितने ही ताकतवर और ओहदों के मालिक मुख्तलिफ जमानों में आए लेकिन वो नीस्तो नाबूद हो गए। कितने ही लोगों को मट्टी ने बुसीदा कर दिया और इनके नामों निशान तक मिट गए। ये वो थे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे और अब इनकी जमातें और गिरोह कब्रिस्तान में दफन है। हम कभी नहीं ऐसे लफ्ज सोचते। आज तो दुनिया में इन बातों को करने वाले को शायद पता नहीं कहाँ भेज दें लोग, कि ये क्या बेकार बातें शुरू कर दी इन लोगों ने, इनको क्या हो गया? अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं, तू क्या समझता है कि दुनिया तुझे मुकम्मल हासिल हो गई और फिर इसकी ख्वाहिशात में मशगूल हो गया? बहुत जल्द तुझ पर बुढ़ापा तारी हो जाएगा और तेरे पास डराने वाला आया और तू जानबूझकर इसको सरफे नजर करता रहा। डराने वाला कौन था? वक्त का रसूल अलम यातिकुम नज़ीर, सूरत मुल्क में आता है, और अपनी नींद की लज्जतों में मशगूल है। गुज़श्ता उम्मतों और फना हो जाने वाले ममालिक पर नज़र डाल के ज़माने और दिनों की गर्दिश ने किस तरह इनको फना कर दिया और जहन्नुम में पहुंचा दिया। दुनिया से इनके आसार और निशाना तक मिट गए और सिर्फ इनके वाकियात बाकी रह गए। किसी का सोचे जिसको बहुत करीब से मरते हुए देखा हो। इमेजिन कीजिए, कोई खाला, कोई मामू, कोई चचा, कोई फुफ्फो, बाप, माँ, भाई, बहन। आप सोचिए, चीखें, चिल्लाएं, शोर मचाएं, वापस आते? इसी तरह एक दिन हम वापस नहीं आएंगे, हम नहीं होंगे। खुद को यकीन दिला, आईना देखे तो कहे, आज कंघी कर ले, कल तू नहीं कर सकेगी। आज कपड़े बदल ले, कल तू खुद नहीं बदल सकेगी, तेरे कपड़े काटे जाएंगे। जब चूड़ी पहने ना, ज़रूर सोचा करें। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, किसी की मदद की थी गुसल दिलवाने में। बच्चे की डिलीवरी के दौरान माँ की डेथ हो गई थी, तो वो माँ जब नहलाने के लिए लाएगी तो उसके जेवर पहना हुआ था उसने, चूड़ियाँ वगैरह कपड़े भी थे, घर से तो वो बेबी के लिए गई थी ना। तो जब उसके कंगन नहीं उतर रहे थे ना, तो फिर बुला कर आरी के साथ तो किसी चीज़ से कटवाए थे, तो वो मुझे याद आता। आप पहन रहे, आपको क्या पता आपने उतारने हैं कि कौन उतारेगा। हर एक के ऊपर ये वक्त आने वाला है, अभी आया नहीं है तो हम समझते आने ही कोई नहीं है। कितने ही मालदार बादशाह और बड़ी बड़ी फौजें और लश्कर इस दुनिया में आए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील की, बड़े बड़े महल्लात और इमारतें तामीर की, माल और हीरे जवाहरात के जखायर जमा किए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो पैगाम आ गया जो रद्द नहीं किया जा सकता। इसको हाईलाइट करें, मलकुल मौत की कॉल को हम रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, लेनी ही पड़ेगी। इनकी तकदीर नाजिल हो गई जिसे रोका नहीं जा सकता, यानी मौत आ गई। अल्लाह ताला जो बहुत बुलंद है, बादशाह है, जब्बार, मुतकब्बिर और कहार है, जाबिरों को हलाक और मुतकब्बिरों को मिटाने वाला है, तो जल्दी जल्दी अपने आप को दुनिया और इसके मकरो फरेब से बचा ले और इन घात की जगहों से जो तेरे लिए लगाए बैठी हैं और अपनी खूबसूरती को तेरे लिए बतौर जेवर लेकर बैठी हैं और इसे खुशनुमा बनाकर जाहिर कर रही हैं, कहीं कोई अक्लमंद इसकी हिरस करेगा या साहिबे बसीरत इस फानी दुनिया से दिल लगाकर खुश होगा? जबकि वो जानता है कि इसका फना होना यकीनी है और इसको दवाम नहीं। कहाँ गई हमारी ख्वाहिशें, कहाँ गई तमन्नाएं? कब्र में चल जाएंगे, जो शख्स रात के वक्त इसके हमले से डरता है, इसकी आंखें कैसे सोएंगी? यानी पता चल जाए कि नींद में ही मौत आ जानी है तो आंखें बंद करेंगे कि ये तब खुलनी नहीं है। रात को जब सोएं तो सोचें, पता नहीं आंख खोलूंगी सुबह के लिए। और इसका नफ्स कैसे सुकून में रहेगा जबकि वो मौत का मुंतजर हो? मुमकिन है कोई दुनियादार इसकी लज्जतों और रंगीनियों से फ़ायदा उठा ले और तरह तरह की असनाफ जमा कर ले और दुनिया के मजीद हसूल के लिए सख्त मेहनत करे। क्या वो इसकी बीमारियों, आजमाइशों और तकलीफ़ों में इसकी सख्ती और मशक्क़त बर्दाश्त करेगा? कितने ही लोग जिन्हें दुनिया ने अपनी हमेशगी और दवाम का धोखा दिया और वो औंधे मुंह ज़मीन पर बिछाड़ दिए गए, इस दुनिया ने इन्हें अपने धोखे से और अपनी घात से ना निकलने दिया और अपनी तकलीफ से शिफा और अपनी बीमारी से बरी ना होने दिया। आखिरी लफ्ज़ सुनिए, तेरी दुनिया तुझे आखरत के मुकाबले में किस कदर बेवकूफ़ बनाए हुए है, जबकि तू अपनी ख्वाहिशात पर सवार है। दुनिया को आखरत पर तरजीह देने वाले, मेरे ख्याल से आखरत के मुतल्लिक तेरा यकीन नहायत कमज़ोर है। क्या इस बात का तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है या इसके बारे में कुरान में कोई हुक्म नाजिल हुआ है? सोचिए ये लोग कैसे सोचते थे और हम कैसी जिंदगियां गुजारते हैं। और आपको होता है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हारिस उनका नाम था, और आखिर में क्या था? मुहासबी। क्यों कहते थे इनको? आइए पढ़ लें। हारिस मुहासबी नहायत जाहिद और आबिद इबादत गुजार बुजुर्ग थे। इनका ये नाम कसरत से मुहासबा नफ्स करने की वजह से पड़ा। इमाम सिमानी कहते हैं, अल मुहासबी इसलिए नाम पड़ा कि वह बहुत ज्यादा मुहासबा नफ्स किया करते थे। क्या हम अपने नाम के साथ ये नाम लगवाना चाहते हैं? करने की कोशिश तो करें। और इब्ने जौजी का नाम जहां आता है ना, बस मेरे जहन में तो शैतान से जंग आती है। इतनी मशहूर किताब है इनकी, तलबीस इब्लीस, और भी हैं बहुत सी। इनके भी ज़रा चंद अकवाल सुनिए। अपने नफ्स को मुखातिब करके फरमाते हैं, मैंने एक दिन अपने नफ्स पर एक मुहक्क़ की तरह तफक्कुर किया। मुहक्क़ कौन होता है? जो हक लेने आता है। निकाल कर्जा, मेरा हक क्या तुझ पे, दे मुझे। मैंने इसका मुहासिबा किया, कबल इसके किसका मुहासिबा किया जाए। मैंने इसका वजन किया, कबल इसके किसका वजन किया जाए। मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की है, बचपन से लेकर अब तक अल्लाह का करम ही करम है। अल्लाह ने फिर कभी काम पर पर्दा डाला, फिर काबिले सजा फेल को माफ किया और मैंने जुबान से इसका शुक्र अदा किया। मैंने अपनी गलतियों पे गौर किया, ये मेरे और आपके लिए, हम सबको अपनी गलतियों पे गौर व फिक्र करना है। मैंने अपनी गलतियों पे गौर व फिक्र किया, अगर मुझे इसकी सजा मिलती तो मैं बहुत जल्द हलाक हो जाता, अगर वो लोगों के सामने वाजे हो जाती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। और कोई भी मोतकिद ये बात सुनकर एतकाद नहीं रखेगा। मोतकिद एतकाद करने वाला, यानी अकीदा रखने वाला। कोई भी मोतकिद ये बात सुनकर एतकाद नहीं रखेगा कि इसका ताल्लुक कबीरा गुनाहों के साथ है, यहाँ तक कि मेरे बारे में वही गुमान रखेगा जो वो फासिकों के बारे में रखता है। तो मेरे लिए ये बहुत कबीह और बुरी बात है और मैं तरह तरह की तावीलाते फासिदा का शिकार हो जाऊंगा। मेरी ये कैफियत हो जाने के बाद मैं तो यही दुआ करूंगा, और हम सब भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह तेरी हम के साथ तू पाक है, और जो तूने मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दिया तो मुझे बख्श दे। फिर मैंने अपने नफ्स को इस बात पर शाकिर बनाने की कोशिश की, लेकिन इसने कमा हक का हो इसको ना पाया, तो मैंने अपनी कमी कोताही पे गिरिया व आहुजारी की, यानी रोया, और उम्मीद करते हुए कुबार के रुतबे पे पहुंच गया, और उम्मीद करते हुए बड़े लोगों के रुतबे पे पहुंच गया। उम्र बीत गई लेकिन मकसूद हासिल नहीं हुआ। ये उनकी बातें हैं जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के आज हम लोग अपना मुहासबा करते हैं। तो आप सोचिए फिर मेरा और आपका क्या बनेगा? क्या सोचें मेरे और आपके लिए क्या सबक है? एक ऐसी घड़ी दिन की मुकरर करें, कुछ नहीं और करना, सब छोड़ दें। ये एक वक्त में दो काम करना छोड़ दें, कुछ भी नहीं मिलेगा उससे, सिर्फ शैतान का एक गुलगुला होता है कि ये काम बस अभी करना होगा। कोई वक्त सोचे जो आपका दिल चाहे, बच्चे सो रहे हैं तो वो ले लीजिए टाइम, शौहर अभी घर पे नहीं आए, तन्हाई का वक्त होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। उस वक्त फिर आप अपने नफ्स से मुतालबा करें, एक एक हरकत जो दिन भर में की थी ना उसका हिसाब लें, ठीक है? जैसे एक ताजिर अपने हिस्सेदार से हिस्सा लेता है और फिर अपने गुनाहों को गिने। देखिए, दूसरों से अल्लाह ने छुपा दिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है कि हमारी याददाश्त में होते हैं, हमें अपने आप का पता होता है कि हम कहीं दूसरों की नज़रों में बहुत नेक ही ना मशहूर हो जाएं। कभी दूसरों की ज़ुबान से अपनी तारीफ़ें सुन के उसको सच ना समझें, ये भी बात अपने लिए लिखें। हम चार लफ्ज़ क्या बोलने सुनने लग जाते हैं, हमारे अंदर हवा भर जाती है, हम कहते हैं जो लोग कह रहे हैं ना अल्लाह ने भी यही सुनना, हमें नहीं पता अल्लाह की नज़रों में हम कहाँ खड़े हैं। फिर अपने आप को देखें, एक आदमी मुहासबे नफ्स किया करता था। एक दिन इसने अपनी उम्र का हिसाब किया, इसकी उम्र के 60 साल थे। फिर इसने दिन शुमार किए तो कुल 21,500 दिन थे। फिर इसने एक चीख मारी और गश खाकर गिर गया। जब जरा होश आई तो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं अपने रब के पास 21,500 गुनाहों के साथ पेश होऊंगा। वो कहने लगा, अगर एक दिन में एक गुनाह भी हो तो गुनाह किस कदर ज्यादा हो जाएंगे कि शुमार मुमकिन नहीं है। और एक नहीं करते हम, वो तो वही दिन होगा जो सारा दिन सोते ही रह जाएं, बस जागेंगे तो गुनाह तो बहुत होंगे हमारे। फिर वो कहने लगा, मुझ पर अफसोस, मैंने उम्र गुजार दी, अपनी आखिरत खराब कर ली, अपने मालिक की नाफरमानी की। फिर जब मैं आबाद घर को छोड़कर खंडर और वीरान घर में मुंतकिल नहीं होना चाहता, तो हिसाबों किताब जजाओ सजा वाले घर की तरफ बगैर अमल और सवाब के कैसे मुंतकिल होना चाहूँगा। फिर इन पर मौत की निजा तारी हो गई तो लोगों ने इन्हें हिलाया, लेकिन वो मौत की वादी में जा चुके थे। इतना उनको अपने मुहासबे का गम लगा आपकी ज़ुबान में, आज हमारी ज़ुबान में, कि दिल का दौरा ही पड़ गया। तो मैं और आप खुद सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं। इस किताब ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमने इससे क्या लिए ये अब हम खुद देखेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी तक जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, हर टॉपिक हमें अपने लिए लगा और एक एक बात ऐसे थी कि इस पे गौर व फिक्र किया जाए। तो ये बातें एक दफ़ा पढ़ के सुन के छोड़ने वाली नहीं होती, आप इसको दोबारा भी शुरू करें। अब आप उनको पढ़ने का तरीका तो आ ही गया ना, एक एक टॉपिक को घर में पढ़ें, जेम्स निकालें, अलग लिखें। आप देखिए कि 12 टॉपिक हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। आप अपनी रूटीन के मुताबिक देख लीजिए कि हर दिन एक टॉपिक करते हैं तो 12 दिन है। आप इसमें तैयारी करें, एक पूरा महीना लें, जो भी बात ना समझ आए बिस्मिल्लाह करें, पूछें, और फिर इंशाल्लाह हम इसका एक असाइनमेंट करेंगे, इधर मिल के सब जमा होंगे और अल्लाह ने चाहा तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, सफाई तो हर वक्त ही करते हैं ना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को कबूल करे। चंद लफ्ज़ों में दुआ करते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس ہم تجھ سے بڑی امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے या अल्लाह, हमारे दिल को स्याह ना करना, या अल्लाह हमारे दिलों को सख्त ना करना, या अल्लाह हम इस कुरान की जगह पर आकर भी दिल सख्त ले कर ना जाए, या अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ कर दे, या अल्लाह बुखल से, रिया से, दिखावे से, शोहरत से, हसद से, तकब्बुर से, दुनिया की मोहब्बत से, हुब्बे जाह से दिलों को पाक कर दे, या अल्लाह हमारे दिल परिंदों के जैसे दिल कर दे, या अल्लाह अंदर से कुरेद कुरेद कर एक एक बुराई को निकाल दे, और या अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह कर दे। या अल्लाह हम तुझसे इखलास का सवाल करते हैं, या अल्लाह हमें इखलास कामिल अता फरमा, या अल्लाह तुझसे तवक्कुल का सवाल करते हैं, बेहतरीन तरीके तुझ पे तवक्कुल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें तौफीक दे, अपने सारे मामले तेरे ऊपर डाल दें, दुनिया के, दीन के, आखरत के। या अल्लाह हमारे कंधों को हल्का कर दे, या अल्लाह हमें ज़िंदगी में आसूदा कर दे। या अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وحب أحب إلي من نفسي وأهلي ومن ماء البارد. اللہ تسے تیرا خوف مانتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے، یا اللہ ایسا خوف دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے. یا اللہ تجھ سے امیدیں لگ جائیں، یا اللہ ہماری ساری امیدیں تجھ سے لگ جائیں، یا اللہ لوگوں سے ہماری ساری امیدیں کٹوا دے، یا اللہ میں صرف اپنا ہی یا اللہ محتاج کر دے، اور یا اللہ تقویٰ عطا کر دے. یا اللہ صرف تیرا خوف ہمیں گناہوں سے روکے، اور تیرا خوف ہمیں نیکیوں کے مواقع پہ آگے لے جائے. یا اللہ لوگوں کا خوف دلوں سے نکال دے. یا اللہ نہ لوگوں کا خوف ہمیں گناہوں میں مائل کرے اور نہ نیکیوں سے روک سکے. اور یا اللہ تیری رضا چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک. یا اللہ اپنی رضا دے، یا اللہ موت کے وقت جائے یہ تو ہن نفس المطمئنہ کی پکار سنوا دے. اور یا اللہ اپنا سب سے زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا دے. یا اللہ دل کی ایک ایک دھڑکن کے ساتھ تیری شکر کے ترانے ہوں. یا اللہ ہماری زبان تیرے گن گائے، اور یا اللہ ہمارے جسم کا ایک ایک کوس تیرے شکر کے رنگ میں ڈھلاؤ. یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر، تیری دی ہوئی زندگی کا شکر، تو نے ہمیں کتنی مصیبتوں سے بچایا. یا اللہ میں شکر گزار بنا. اور اللہ سب سے بڑھ کر اس قرآن کی دولت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ صبر کی توفیق دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ صبر کا فیضان کر دے. یا اللہ تواصی بالحق کے راستے کا صبر کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ ہمیں ورا کی دولت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اعلیٰ بلندیاں دے. یا اللہ شیطان کو ہم سے مایوس کر دے. یا اللہ شیطان ہمیں دیکھ کر راستہ بدل جائے. یا اللہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے پاؤں نہ پکڑ لے. اور یا اللہ غور و فکر اور تفکر کی عادت ڈال دے. یا اللہ ہمارا شمار اولوال الباب میں کر دے. یا اللہ ہمیں کائنات پہ، نفس پہ، اپنی ذات پہ، اپنے حالات پہ غور و فکر والا بنا. یا اللہ اتنا مشغول کر دے غور و فکر میں کہ ہمیں کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہ رہے. اور یا اللہ اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق دے. یا اللہ محاسبہ نفس ہمارا پسندیدہ کام بن جائے. یا اللہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کر لیں. یا اللہ ہمیں نفس امارہ کے چنگل سے آزاد کر، نفس لوامہ کی پکار کو سننے والا اور نفس مطمئنہ بننے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرح اپنی فکر لگا دے. یا اللہ آج زبان بول رہی ہے، ایک دن نہیں بولے گی. آج کان سن رہے ہیں، ایک دن نہیں سنیں گے. آج آنکھ اٹھتی ہے، ایک دن نہیں اٹھے گی. یا اللہ وہ آخری نیند ہوگی جو ہماری آنکھیں آخری بار بند ہوں گی. یا اللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا ہم آخری بار بستر پہ لٹائے جائیں گے. یا اللہ ایک دن وہ بھی آئے گا ہم آخری کروٹ بدلیں گے. یا اللہ ایک وہ وقت آئے گا جس کے بعد ہماری کمر کبھی دوہری نہیں ہوگی. یا اللہ ایک آخری وقت آئے گا جب ہم آخری بار اپنے پاؤں میں خود جوتا پہنیں گے. یا اللہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہم کنگھی کریں گے اور وہ ہمارا آخری بار کنگھی کرنا ہوگا. یا اللہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ ہم لباس خود پہنیں گے اور اتارے گا کوئی اور. اور یا اللہ ایک آخری غسل بھی ہوگا جو ہم خود کریں گے، اس کے بعد دوسرے ہمیں غسل کروائیں گے. اور یا اللہ ایک آخری دن ہوگا جس دن ہم خود سوار ہو کر جائیں گے بلکہ دوسرے ہمیں سوار کریں گے. یا اللہ آج سانس ہے، وہ آخری سانس ہوگی. یا اللہ ایک دن ہم اپنی زندگی کا آخری لقمہ توڑیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم اپنے نصیب کا آخری گھونٹ پئیں گے. یا اللہ ایک دن آئے گا کہ جب ہمارا آخری سانس ہوگا اور ہماری سانس اکھڑ جائے گی. یا اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی توفیق دے. یا اللہ الا منت اللہ بقلب سلیم. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں قلب سلیم کے ساتھ تیرے پاس آنے والا بنا دے. یا اللہ دلوں سے ہر میل کچیل کو نکال دے انسانوں کے ساتھ، اور تیرے ساتھ معاملے درست کرا دے. یا اللہ ہمیں تیرا خوف بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی لاحق ہو، اور تیرے سامنے کھڑا ہونے میں بھی وہی راستے میں آئے. या अल्लाह जितने साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ इसको पूरा सुना और कोई भी किसी मजबूरी में पीछे हुआ, या अल्लाह तू उनको बेहतरीन तरीके से इससे फ़ायदा उठाने वाला बना। या अल्लाह इस दिल ने ही तो परेशान किया हुआ, या अल्लाह हमें इसकी इसलाह के पीछे लगने वाला बना दे। और या अल्लाह जो भी साथी यहाँ कुरान सीखने आते हैं, या अल्लाह तो उनके लिए आसानियाँ फरमा। या अल्लाह इस दिल की मुस्तकिल ग़िज़ा कुरान है। या अल्लाह अगर हमने अभी इसको नहीं सीखा तो हमें सीखने वाला बना, और सीखा है तो इसको या अल्लाह मज़ीद सीखने वाला बना दे। या अल्लाह हमें इस किताब की खिदमत वालों में चुन ले। कल क़यामत के दिन हमारा नाम उस लोगों में डालना कि जो इस दौर में इस कुरान की खिदमत करते थे। या अल्लाह हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं टाइटल चाहिए। या अल्लाह अपनी नज़रों में बड़ा और लोगों की नज़रों और हमारी नज़रों से हमें निकाल दे। हमारे उस्तादों पे अपनी रहमतें फरमा। या अल्लाह हमें उनकी कदरदानी की तौफीक दे, हमें उनकी दुआएं लेने वाला बना दे। और या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआएं करने वाला बना दे। हमारे माँ बाप पे अपनी रहमतें फरमा, जो जिंदा हैं सेहत आफियत दे और वो हमारे लिए दुआएं करते रहें और हमें उनकी दुआएं लगती रहें। और जो दुनिया से चले गए हम उनके लिए दुआएं करते रहें। हमारे भाई बहनों और उनकी औलादों और बीवियों शोहरों पे रहम फरमा, और हमारे तमाम अजीज़ व अकारिब पे अपना रहम फरमा। और जो भी ईमान की हालत में या अल्लाह तेरे पास चले गए उनकी बख्शिश फरमा। जो बच्चियाँ बिन ब्याही बैठी उनके नेक जोड़ मिला दे, और शोहर बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह ये स्कूल क़यामत तक कायम रखना। या अल्लाह ये नस्लों को तैयार करने वाला बन जाए। या अल्लाह इसके ज़रिए से हम बातिल से लड़ें, कुफर से लड़ें और आपस में मोहब्बतें करें। या अल्लाह मुसलमानों के दिलों को किताब पे जोड़ दे, कुरान और सुन्नत पे जोड़ दे। या अल्लाह दीन के नाम पे बेदीनी ना फैलाएं, नफ़रतों की जगह मोहब्बतों को फैलाने वाले बने। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين سبحانه